દિવસ બોલું છું. 10 ને 10 નવેમ્બર 10 ની 10 નવેમ્બર
10 નવેમ્બર
ગુરુવાર 2011 કારણ કાર્ય રહસ્ય સંબંધે ચર્ચા કરી. ઓમ નમઃ સિદ્ધે था नंबर 321, 22 और 23 उसका हमने कल अर्थ देखा था. यहाँ तो अपनी कार्य के कारणों की चर्चा चल रही है. अभी हम पृष्ठ संख्या गुजराती कारण कार्य रहस्य 94 हिंदी में भी हम 94 ही आए हैं उस पर कि कारणों के या कार्यों के कारण जानना क्यों आवश्यक. तो पहले हमें तो कहते हमें अपनी मिथ्या भ्रांति अज्ञान दूर करना है क्योंकि हमें सम्यक तत्व प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग पर आगे होना है. हमें अपने को पहचान. तो अभी तक भ्रांति यानी ये किस किस बारे में हमारा मिथ्या ज्ञान चल रहा है. तो कहते स्वरूप के बारे में जो विपरीतता चल रही है ज्ञान की बात चल रही है. मिथ्या ज्ञान किसको कहना. तो जहाँ स्वरूप विपरीतता चल रही है कारण विपरीतता चल रही है और भेदाभेद विपरीतता है. ये मिथ्या ज्ञान में ये तीन विपरीतताएं चलती है. कौन कौन सी. स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता. छह द्रव्य है, सात तत्व है, उसके स्वरूप संबंधी जो कोई विपरीत श्रद्धान विपरीत ज्ञान चल रहा है उसको यहाँ स्वरूप विपरीतता कहेंगे. कारण विपरीतता तो कोई भी कार्य ने प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है उसके कारण क्या है. क्या अन्य द्रव्य उसका कारण है, अन्य कोई ईश्वर इसका कारण है. तो कहते इस संबंधी जो मिथ्या भ्रांति चलती है उसको कहेंगे कारण विपरीतता. भेदाभेद में उसमें तो द्रव्य और गुण, उसके द्रव्य और पर्याय, उसमें भेदता भेदता या दो भिन्न द्रव्यों में भेद है अभेद है इस संबंधी जो विपरीतता चल रही है वो भेदाभेद विपरीतता. तो जब तक ऐसी विपरीतता चलेगी तो कोई भी अन्य बाह्य उसके उपचार करेंगे, बाह्य साधन करेंगे. कोई तप करना चाहता है, कोई दान देना चाहता है, कोई यात्रा करना चाहता है, कोई पूजाएं करना चाहता है, कोई ऐसे ही करके भगवान के नाम लेके ध्यान करना चाहता है. परंतु जब तक ये विपरीतता कायम है तब तक किसी भी इन बाह्य अलग अलग जो साधनों से मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हो सकता. तो इसलिए हम यहाँ कारणों की चर्चा कर रहे हैं. जब हम निश्चित अपने ज्ञान में निर्णय करेंगे कि किसी कार्य का कार्य किसको कहेंगे, द्रव्य की प्रत्येक पर्याय उसका कार्य है, तो उस कार्य का कर्ता उसके कारण कौन है, यह हमारे ज्ञान में निश्चित होना चाहिए। जब तक उस संबंधी विपरीतता है, ऐसे विपरीत ज्ञान के साथ सही श्रद्धान नहीं हो सकता, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान में ये भ्रांतियां चल रही हैं। इसलिए यहाँ कारणों की इतनी विस्तार से चर्चा चलेगी, अन्य अन्य कारणों को इतना अभी तक हमने निमित्त उपादान संबंधी जो चर्चा की है तो वो भी कारण ही है, तो उसमें तो हमने विस्तार से देखा था, एक बाजू त्रिकाल, एक बाजू उपादान कारण है जो द्रव्य की अपनी शक्ति है, और जो परद्रव्य की उपस्थिति है उसको कहेंगे निमित्त कारण। तो प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक समय की जो प्रत्येक द्रव्य की अवस्था है, वो अवस्था उसके अपने कारण होती है, उसको कहेंगे उपादान कारण। और उस समय परद्रव्य अपना कार्य कर रहा है और ऐसा लगता है कि इसने ये कार्य किया क्योंकि दिखाई दे रहा है बाहर से उसकी उपस्थिति, तो उसको कहेंगे निमित्त कारण। प्रत्येक कार्य में दोनों अवस्थित यानी उपस्थित होते ही होते हैं, दो कारण हैं, एक निमित्त कारण एक उपादान कारण। उपादान कारण में हमने तीन भेद देखे थे, एक त्रिकाली उपादान कारण, जिस द्रव्य की वो पर्याय है वही द्रव्य उसका कारण है, तो हम पूछते कि द्रव्य तो अनादि से पड़ा है तो ये पर्टिकुलर कारण कार्य क्यों नहीं हुआ, तो कहते हाँ ये पर्टिकुलर कार्य विशिष्ट समय होगा, उस समय में दो कारण बताए थे, वो पर्टिकुलर समय में दो बातें बताई, एक पूर्व पर्याय का व्यय और एक इसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्याय का उत्पाद। तो कहते पूर्व पर्याय का व्यय भी इसी समय हुआ और इस समय की पर्याय भी इसी समय उत्पन्न हुई, क्योंकि एक ही समय में ना, एक ही समय में इसका उत्पाद है, तो इसका व्यय और इसका उत्पाद एक ही समय में होता है, तो यही उसकी जो योग्यता है द्रव्य उस पर्याय रूप परिणमने की, जो द्रव्य की योग्यता है उसी को हम वो डेफिनेट उसका कारण समझते हैं। तो समझ में आती है, उपादान कारण में हमने अलग अलग भेद किए, यानी एक तो निमित्त कारण है, उपादान में तीन देखे, त्रिकाली उपादान, दूसरा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वो कारण बताया।
जो पर्याय चली गई उनके पर हम क्या ध्यान क्यों देते, जो महत्व की पूर्व की जो पर्याय जिसमें कार्य हो रहा है उनकी बात हम क्यों 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 ना करें, और जो चली गई उनको।
बात सही है आपकी, आपके आपका प्रश्न ऐसा है, जो पूर्व पर्याय जो चली गई है उसकी क्यों चर्चा करते हैं, जो अभी वर्तमान में उत्पन्न है उसी की बात करो ना। हाँ वही सच्चाई ने हम लास्ट में यहीं पर आके पहुंचेंगे, तो सच्चा कारण कौन सा है, तो जो उत्पाद रूप पर्याय वही सच्चा कारण है, परंतु क्या उसकी पूर्व की पर्याय भी निश्चित है कि चाहे जैसे पर्याय में से ये पर्याय उत्पन्न होगी। हाँ वो भी निश्चित है, यानी हर जो पर्याय मान लेते हैं 10 नंबर की पर्याय, तो 7 नंबर की पर्याय पर ये 10 नंबर की पर्याय उसके बाद नहीं आएगी, ये जो 10 नंबर की पर्याय वो 9वें नंबर की पर्याय के व्यय पूर्व की 10वीं होगी। इसका अर्थ क्या है कि 10वीं पर्याय निश्चित है ये तो बात हुई है, परंतु कौन सी पर्याय के व्यय पूर्वक होगी ये भी निश्चित है, यानी उसकी पूर्व पर्याय निश्चित हुई, उसकी पूर्व पर्याय भी निश्चित है, उसकी पूर्व पर्याय भी निश्चित है, यानी प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय पर निश्चित है, यानी चाहे जैसे अभी हमारी संसार पर्याय चल रही है, बीच में मोक्ष पर्याय हो जाए और फिर दोबारा संसार पर्याय हो जाए, ऐसी तो बात नहीं हो सकती, तो ये पर्यायों का क्रम भी सुनिश्चित है, ये भी इसी में से सिद्ध हो जाता है। अभी हमने जो 4 कारण देखे ना, एक तो निमित्त कारण, एक त्रिकाली उपादान कारण 2nd नंबर, 3 नंबर का अनंत पूर्ववर्ती जो पर्याय वो कारण का, और ये लास्ट में तत्समय की योग्यता। तो जब हम निमित्त को कारण कहते हैं, कथन पद्धति होती लौकिक में, तो अन्य निमित्तों से दृष्टि हटकर एक विशिष्ट निमित्त पर हम आते हैं, परंतु कहेंगे ये सच्चा कारण नहीं है, ये व्यवहार कहेंगे उसको। तो सच्चा कारण कौन है, तो उपादान कारण। तो उपादान में भी 3 भेद हैं, तो हम त्रिका यानी निश्चय के सामने हम कहेंगे ये त्रिकाली उपादान कारण है वो सच्चा कारण। अब इसको हमने हटा दिया। ये तीन कारण हमारे पास है, उपादान ही है तीनों के नाम। तो कहते त्रिकाली उपादान की अपेक्षा हम स्पेसिफिक कौन से पर्याय के व्यय से वो पर्याय होगी, इस पर आ गए। तो नंबर टू और नंबर थ्री में अगर हम सोचेंगे तो इसकी अपेक्षा हम त्रिकाली उपादान को भी व्यवहार कहेंगे, क्योंकि नियामक क्या है, कौन से पर्याय के व्यय पूर्वक ये होगी, तो कहते ये नंबर। फिर अनंतर पूर्व और तत्समय की योग्यता, इन दो में अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, यही इसका सच्चा कारण। कौन सा? जिस पर्याय की योग्यता रूप धर्म द्रव्य में पड़ा है उस समय उसी पर्याय रूप परिणमने की योग्यता उस द्रव्य में, और यही उसका नियामक यानी कंट्रोलिंग कारण यही है। और हमें कहाँ नजर जाती है हमारी पूरी, इसकी तो बात पता नहीं, इसका भी पता नहीं, और हम केवल निमित्त की ओर देखते हैं और यह आया इसलिए हमारा कार्य होगा ऐसा मानते हैं। अनादि से पड़ी है, अनादि से ऐसी योग्यता पड़ी है कि इस पर्टिकुलर समय पर यह कार्य होने वाला है, और वो द्रव्य में से अपनी ये शक्ति से ही होगा। उसके पूर्व की पर्याय इस पर्याय पूर्व वो कार्य होगा, उस समय का समय ये निमित्त भी निश्चित है, यानी सब कुछ निश्चित है। तो क्या करना रह गया? हाँ, ये निश्चित करना है अपनी मान्यता में। हमें बाहर तो कुछ करना ही नहीं है, ना अपनी पर्याय बदलना है ना पर की बदलना है, हम बदल ही नहीं सकते। तो हमारे सभी पर्याय ऑटोमेटिक अपने स्व समय पर होती है, परंतु हमने ऐसा मान रखा है, नहीं नहीं मैं करके दिखाऊंगा, ये कल होने वाली तो मैं आज करके दिखाऊंगा, नहीं होगी। ख्याल में आते, इसका स्वीकार होना ही पुरुषार्थ है। हम तो पुरुषार्थ करना है, अन्य कुछ करने की बात करते, हमें कुछ इच्छा हुई और हमने कर दिखाया तो हम मानते हैं हमारा पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो हमारे उसके बारे में कंफ्यूजन चलता है, ये सारा है। यानी जो कारण संबंधी विपरीतता है वो जब तक दूर नहीं होती तब तक ये तो आगे का रास्ता ही खुलेगा नहीं अपने, और ये सब अपने मान्यता में अपने ज्ञान में चलेगी बातें। पहले में तो लोगों को लगता है बाहर कुछ करेंगे तो मिलेगा ना, कुछ उपवास नहीं किया, कोई दान नहीं दिया, कुछ क्रियाएं नहीं की, और कैसे होगा इसको। तो कहते पहले में पहले श्रद्धा और ज्ञान में ही तब्दीली होगी, तभी जाके बाहर की वो क्रियाएं भी, बाहर की क्रियाओं का निषेध नहीं है, परंतु ये झूठी मान्यता के साथ करने से उसमें से कुछ मिलने वाला है, थोड़ा पुण्य बंधेगा। ऐसा तो पुण्य हम अनादि से बांधते आए, पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप, और उसके फल भी भोगते रहते हैं, कभी पुण्य के फल कभी पाप का फल चलता रहता है। और ये ऐसी जो गाड़ी है, ऐसा चक्र अनादि से चला रहा है, तो इसलिए अभी ये जो हमने चार देखे ना, कौन से, निमित्त कारण, त्रिकाली उपादान, अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता, इन सबको कहेंगे कर्ता कारक। कोई कार्य है उसका कारण क्या है, कौन सा कारण, ये कर्ता ये करने वाला। तो क्या और भी कुछ कारक होते हैं? देखो हम इसमें पढ़ेंगे, ये पेज नंबर 94 पर है मेरे उसमें, यानी जो पत्रांक 9 शुरू होता है ना, उसका सेकंड पेज है। ये जो चार कारण हमने देखे, मिला आपको ये पैराग्राफ है, ये जो चार कारण हमने देखे, जहाँ 1, 2, 3, 4, 6 ऐसे नंबर लिखे हैं ना, उसके ऊपर के दो पैराग्राफ, ये जो चार कारण हमने देखे, क्या हो?
हाँ,
देखो ये जो चार कारण हमने देखे उन्हें कर्ता कारक भी कहते हैं। कौन से? निमित्त कारण और उपादान के जो तीन भेद है उनका दूसरा नाम क्या है? कर्ता कारक। हाँ, तुम्हारे प्रश्न का मुझे अंदाजा है, तुम कहोगी यदि ये कर्ता कारक है तो क्या अन्य और भी कारक है? कारक यानी करने वाले, कार्य करने वाले, इनको क्या नाम दिया? कर्ता कारक। यानी ये निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों को मिलकर क्या नाम दिया? कर्ता कारक। तो प्रश्न उठता है, ये कर्ता कारक है तो अन्य भी कुछ टाइप ऑफ कारक है क्या? यदि है तो कौन से है? और कारकों की परिभाषा भी समझाओगी तो अच्छा रहेगा। ये सामने से प्रश्न है कि कारक कहना किसको, परिभाषा नहीं डेफिनेशन, कारक शब्द का अर्थ क्या है। देखो अभी उसका यहाँ विस्तार से चर्चा होगी। हमें पता ही है कि कार्य अर्थात पर्याय, कार्य कहना किसको, प्रत्येक द्रव्य की अपनी जो पर्याय है वह उस द्रव्य का कार्य है। हम विभाजन करके कहेंगे तो हर एक गुण में अपना अपना कार्य चलेगा। इसी का दूसरा नाम क्या है, परिणाम। कार्य कहो, परिणाम कहो, पर्याय कहो, दशा, हालत, अवस्था, कर्म, ये आठ कर्म वाला कर्म नहीं, जिसको हम कर्ता कर्म कहते हैं ना, ये कर्म है ना, कार्य हर समय की जो अवस्था है उसको भी कर्म कहने के, हम कहें कर्ता कर्म संबंध। द्रव्य अपने पर्याय का कर्ता है, तो द्रव्य में और उसकी अवस्था में क्या संबंध है, तो कर्ता कर्म संबंध है। ये कर्म है ना अवस्था, कार्य, परिणति, क्रिया, ये सभी कैसे समानार्थी शब्द है। क्रिया का यानी कार्य का जो जनक है, जनक किसको कहेंगे, उत्पन्न करने वाला। कल शब्द आया था ना वो बारह भावना में, जननी, माता को जननी कहा, और यहाँ जनक यानी उत्पन्न करने वाला, कार्य उत्पन्न करने वाला है उसे कारक कहते हैं। क्या कहा, कारक किसको कहना, जो कार्य को उत्पन्न करता है उसको हम यहाँ कारक कहेंगे। तो किसी ना किसी रूप में जो कार्य के प्रति प्रयोजक होता है, अभी इसका अर्थ समझेंगे। किसी ना किसी रूप में यानी कोई कार्य को करने वाला है, कोई उस कार्य का साधन है, वो कार्य हम किसी के लिए करते हैं, किसी में से करते हैं, किसी के आधार से करते हैं, तो कार्य के प्रति कुछ ना कुछ उसका अपना योगदान है। तो यहाँ क्या कहा कि किसी ना किसी रूप में जो कार्य के प्रति प्रयोजक होता है उसी को हम कारक कह सकते हैं, अन्य को नहीं। यानी कोई भी कार्य होता है तो वहाँ हम छह प्रश्न उठ सकते हैं हमारे मन में, वो यहाँ बताएंगे और उस प्रश्नों के उत्तर रूप में जो उत्तर वहाँ आएगा उसको हम कारक कहेंगे। देखो इसको यहाँ पुस्तक में समझाए, किसी भी कार्य के बारे में छह प्रश्न उठ सकते हैं, उनके उत्तर में ही ये छह कारक पाए जाते हैं। अपना विषय क्या है, षट कारक, षट यानी छ, हाँ सिक्स। अभी छह प्रकार के कारक कौन कौन से हैं उसको इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में हम समझेंगे। देखो कार्य किसने किया, कोई भी कार्य होता है तो हम क्या पूछते, किसने किया। घर में भी कुछ वस्तु टूट गई, किसने फोड़ा, किसने तोड़ा, पहले क्या पूछते ये कचरा किया, किसने किया, मैं तो अभी तो साफ करके गई थी, है ना। तो कहते पहला प्रश्न है कार्य किसने किया, तो उसको कहेंगे कर्ता। दूसरा प्रश्न है कार्य संबंधी, क्या किया, कार्य किया ना, तो क्या किया, तो उसको कहेंगे कर्म। हम स्कूल में ये सब व्याकरण जब सीखते थे, आप गुजराती में पढ़े हो क्या, होगा हाँ हाँ, तो आपको समझाना आसान है। तो स्कूल में हम राम ने आम खाया तो राम करता हुआ, आम ये उसका कर्म हुआ, वो उसका क्रियापद यानी जो क्रिया क्या हुई, तो खाने की हुई। तो यहाँ पर यही सब विभक्तियाँ लगने वाली और कुछ नहीं है। तो पहले में पहले कर्ता हो गया, क्या किया उसने, तो कि जो उसने कार्य किया उसको कहेंगे कर्म, तो इसको कर्ता कहेंगे ना। तो यहाँ तो हमने प्रश्न के उत्तर में कर्ता कह दिया, जब हम छह कारकों के नाम पूछेंगे तो हम कहेंगे कर्ता, कारक, कर्म, कारक, उसके आगे कारक शब्द लगाना। जैसे हम द्रव्यों के नाम लेते तो क्या कहते हैं, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, तत्वों के नाम लेते तो जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, ऐसे यहाँ पे हर एक जो हम यहाँ उत्तर हमें मिलेगा उसके आगे हम कारक शब्द लगाएंगे। पहले तो प्रश्न और उसके सिंपल उत्तर यहाँ पढ़ेंगे हम। तो दो कौन से हमने देखा नीलाबेन, हाँ कर्ता का, यानी पहला प्रश्न क्या पूछा, ये कार्य किसने किया, तो उसको कहेंगे जो उत्तर आएगा उसको कहेंगे ये कर्ता है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा, क्या किया, जो उत्तर मिलेगा उसको हम कहेंगे कर्म। तीसरा प्रश्न क्या है, किस साधन द्वारा किया, तो उसको कहेंगे कर्ण। बाद में ये सब आत्मा पर घटित करेंगे, हर द्रव्य पर घटित करेंगे। पहले हम लौकिक उदाहरण से देखेंगे और फिर बाद में और सूक्ष्म बात गहराई से उसमें हम पढ़ेंगे। लौकिक में भी हम कहते हैं कौन से साधन, हमें किस साधन से ये कार्य करना है, तो उसको कहेंगे करण। करण शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, आपको कोई मालूम है? एक तो यहीं पर बताया है, साधन को करण कहते हैं। अन्य कोई अर्थ मालूम है आपको? करण, करण, करण है वो तो। हाँ, अपूर्व करण, यानी वो परिणामों को भी वो वहाँ करण कह रहे हैं। करण तो गणित के जो फॉर्मूले होते हैं उसको भी करण सूत्र कहते हैं। एक बात, करण इंद्रियों को कहते हैं, मालूम नहीं? अंतःकरण शब्द सुना है? अंदर वाला करण, कौन सा? मन। मन को अंतःकरण कहते हैं। और ये सब बाह्य करण है, इंद्रियों का भी नाम एक करण है। तो ये एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ किस अर्थ में लिया है? साधन। हमें कोई कार्य करना है, हमें तो सम्य दर्शन प्राप्त करना है, तो हमें नक्की करना पड़ेगा कर्ता कौन है उसका, उसका कर्म है नहीं, सम्य दर्शन इटसेल्फ कर्म है, उसका साधन क्या होना चाहिए, क्योंकि ये साधन में हम व्यग्र है ना। और बाह्य कुछ ना कुछ अपनी मति कल्पना से या कोई एक दूसरे से सुनकर हम साधन करते रहते हैं, फिर भी योग्य साधन नहीं है तो योग्य कार्य भी नहीं होता है। इसीलिए कारणों की चर्चा इतनी हमें गहराई से करनी है। तो क्या कहा, करण किसको कहना? जिस साधन के द्वारा कार्य होता है उसको हम करण कहेंगे। आगे का नाम क्या है? किसके लिए किया, ये जो कार्य किया वो किसके लिए किया, उसको कहेंगे संप्रदान। स्कूल में जिसको हम चतुर्थी विभक्ति कहते थे, कि प्रथमा द्वितीया तृतीया, है ना, याद है ना कि भूल गए? भूल गए, कोई बात नहीं, अभी याद दिलाएंगे आपको। उसको कहेंगे संप्रदान। इसके लौकिक उदाहरण भी आगे पुस्तक में से पढ़ेंगे हम। किस में से किया, किस वस्तु में से किया, तो कहेंगे उसको अपादान, उस कार्य का अपादान। और छठा प्रश्न है, किसके आधार से किया, उसको कहेंगे अधिकरण। केवल वो षष्ठी विभक्ति वाला है ना, किसका वगैरह, वो यहाँ नहीं लगेगा। बाकी सभी एक संबोधन छोड़ दो, आपने स्कूल में तो विभक्तियाँ देखी थी सप्तमी तक और फिर बाद में संबोधन देखा था, उसमें संबोधन को छोड़ा और षष्ठी विभक्ति को छोड़ा, बाकी यही है। देखो अभी हम पढ़ेंगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कौन रिपीट करेगा? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, देखो कितना एकदम, एक बार सुना तो याद हो गया। आप बताएंगे महेंद्र भाई?
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकार,
अपादान। बहुत अच्छा। देखो यहाँ क्या लिखा है आगे, तुम्हारे ख्याल में आया ही होगा कि कारक छह है। ये जो षटकारक, षटकारक क्या है हमें तो पता नहीं था, जब तक ये क्या होता है पता नहीं था, तो यहाँ ये छह कारक बताए हैं। कौन से? कर्ता कारक। हर एक के आगे अभी हम कारक शब्द लगाकर पढ़ेंगे। पहला है कर्ता कारक, मैं बताऊंगी आपको एक एक शब्द, आपको रिपीट करना। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। नीला बेन रिपीट करेंगे आप? कारक, कारक, हाँ, करण, हाँ, संप्रदान, हाँ, अपादान कारक, अधिकरण कारक। बहुत अच्छा। देखो तुमने स्कूल में व्याकरण पढ़ा था, तब प्रथमा द्वितीया यानी कर्ता, कर्म, करण आदि विभक्ति, उसको विभक्ति कहते थे तब हम, और उनके प्रत्यय कंठस्थ किए थे, याद है? अभी ये प्रत्यय क्या है वो आप भूल गई होगी, जैसे तृतीया के लिए नेशी, ऐसे मराठी की मुझे याद है उसने किया, ऐसा है ना, तो उसके विशिष्ट प्रत्यय लगते थे एक ही शब्द को। हाँ पूना माटे करी हमारे जो वाक्य रचना होती तो उसी के अनुसार होती, उसको वो प्रत्यय लगता है। हाँ अब हम कहते ना भगवान शब्द है और भगवान ने उपदेश करी तो ए लगाए ना ई करके वो भगवान का न का ने हो गया तो ये उसको प्रत्यय कहते। तो ये हम स्कूल में जैसे सीखे थे तो यहाँ पहले पांच कारक तो क्रम से पांच विभक्ति है, यानी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, ये पांच कारक तो पांच विभक्ति है। छठवा कारक सप्तमी विभक्ति समान है, यानी षष्ठी विभक्ति की यहाँ कोई चर्चा नहीं है क्योंकि दो में संबंध बताया किसका ये किसका है तो ये यहाँ नहीं लगता, बाकी तो सभी लगते हैं। जो अधिकरणियों में उसका आधार क्या है उसकी भी यहाँ चर्चा है। षष्ठी विभक्ति संबंध सूचक है, ये किसकी वस्तु है ऐसा हम कहेंगे, वो संबंध बताने वाली है, उसमें कार्य के प्रति कुछ प्रयोजन नहीं है। और अंतिम संबोधन में तो संबोधन नाम मालूम है ना, आठवीं जो विभक्ति संबोधन, जैसे हे राम हे सीते, ये क्या है किसी को पुकारना, उसको कहेंगे उसका नाम लिया हमने उसको कहेंगे संबोधन। हे भगवान, हम कहते हैं भगवान को अत्र अवतर अवतर क्या कहते हैं उनको संबोधन करते हैं, तो उसका भी कार्य में कोई योगदान नहीं है तो वो भी कार्य का सूचक नहीं है, इसलिए इन दोनों को कारकों में नहीं लिया। जो हम व्याकरण में आठ विभक्ति सीखे हैं उसमें से षष्ठी विभक्ति और संबोधन विभक्ति को छोड़ दिया, तो पहले पांच विभक्ति पांच कारक है और छठा कारक तो सप्तमी विभक्ति में जो लगता है वो है अधिकरण। तो हमने अभी तक कौन कौन से देखे, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, आप रिपीट करेंगे। हाँ करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, पहले तो कर्ता कर्म करण क क वाले तीन है, संप्रदान अपादान अधिकरण ये छह नाम हो गए। अब उसके प्रत्येक कारक की परिभाषा डेफिनेशन कहेंगे, कर्ता किसको कहना, कर्म किसको कहना, करण किसको कहना। पहले तो हम केवल प्रश्न और उत्तर ऐसे देखेंगे, अभी यहाँ डेफिनेट उसकी जो डेफिनेशन शास्त्र में बताई है परिभाषा उसको देखेंगे। तो कर्ता कारक किसको कहेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये जो हमें लगती है कि विभक्ति तो हम स्कूल में सीखे, जिसने कार्य किया उसको कर्ता कहते हैं। देखो हमने आज रसोई बनाई, हम कर्ता हुए कि नहीं हुए, हाँ तो उसकी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। हाँ जो स्वाधीन पने से स्वयं के परिणाम को करता है वह करता है, ये कर्ता कारक किसको कहा, जो स्वाधीन पने से अपने परिणमन को करता है, अपने परिणाम को करता है, अपनी पर्याय को करता है, क्योंकि समय सार में भी लिखा है यह परिणमति स करता, जो स्वयं उस पर्याय रूप परिणमता है वो उस पर्याय का करता है। क्या कहा, जो स्वयं द्रव्य स्वयं अपनी पर्याय रूप से परिणमित होता है वो द्रव्य उस पर्याय का करता है। तो रोटी किसने बनाई, रोटी रूप कौन परिणमित हुआ, शिलाबेन के नीलाबेन आटा तो रोटी का कर्ता कौन है, तो आटा उसका करता है। जो द्रव्य स्वयं उस रूप परिणमित होता है वह उसका करता है। स्वाधीन बने से शब्द डाला, स्वाधीन पने कहा पर हम अंदर गए वो लोट निकाला हमने वो थाली में ऐसा घूसा फिर हमने रोटी बनाई तो ये तो पराधीन हुआ ना लोट, तो कहते नहीं वो उसकी अपनी योग्यता से उस समय रोटी रूप परिणमित हुआ है। आपने यदि वो उसमें से लोट में से रोटी बनाई है तो कुछ लोट तो नीचे भी गया जमीन पर, उसकी रोटी में रोटी रूप क्यों नहीं परिणमित हुआ, कुछ तो थाली में चिपका रहा वो रोटी रूप क्यों नहीं परिणमित हुआ, कुछ तो तवे पर वो नीचे से जल गई और वो तो उसकी राख हो गई वो रोटी रूप क्यों परिणमित नहीं हुआ। तो प्रत्येक कण अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमित होता है, वो स्वाधीन पने अपनी पर्याय का करता है, उसको हम कहेंगे कर्ता कारक। इससे हमें परद्रव्यों के कर्तापने का भूत उतर जाएगा, हम तो मानते हैं ना इन सब का कर्ता मैं हूं, मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं काम पड़ा रहता है सब ऐसा ही है ना,
द्रव्य वो परिणाम
द्रव्य अपने परिणाम का करता है, अपना परिणाम प्रत्येक द्रव्य करता है। देखो भी ना ऐसा ही लगता है जब तक इसका अभ्यास नहीं होता है। हाँ उस द्रव्य में ऐसी योग्यता है क्योंकि जिसका निमित्त भी निश्चित है उसमें ऐसी पड़ी रहने की योग्यता है। क्योंकि हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, परद्रव्य का कार्य मैं करता हूँ ऐसी अपनी मान्यता है खोटी। आगे इसमें प्रश्न मैंने ऐसे पूछे है बच्चों के मुंह पे कि सुबह से रात तक हम मरे जा रहे हैं और आप कहते इसमें से एक भी कार्य आपने नहीं किया, जो कल से हम नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो मान्यता कहाँ छूटी। हाँ यानी मैं कर सकता हूँ परंतु अभी नहीं करूँगी, आप नहीं कहते ना देखो मैं नहीं करूँगी तो देखो कैसी रोटी बनेगी, यानी मान्यता कहाँ रही, मैं बना सकती हूँ मान्यता नहीं छोड़ी, वो तो कायम ही रही ना। पहले मैं कर सकती थी तो करती थी, अब मैं कर सकती हूँ पर अभी नहीं बनाऊंगी, यानी अभी भी मैं कर सकती हूँ ये मान्यता कायम रही।
तो महिलाओं के लिए वर्ड तो रोटी नहीं बनेगा।
हाँ बिल्कुल। पुरुषों के क्या माने, मैं पैसा कमा कर लाता हूँ तो घर चलता है ना, ऐसे सच्ची बात है ना। अरे एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, अपनी मान्यता देखनी।
थोड़ा याद दिलाना
अपनी मान्यता है, क्योंकि ऐसा लगता है अरे हम तो यहाँ थके जा रहे हैं इतना काम कर कर के। मान्यता में क्या चाहिए कि ये प्रत्येक ज्ञान की पर्याय स्वतंत्रता से उस विशिष्ट द्रव्य में से आए। गुरु से ही ज्ञान होता तो सबको समान रूप से होना चाहिए था, एक ही क्लास में कोई फर्स्ट क्लास अगर कोई फेल हो जाता है, गुरु ने ही सबको ज्ञान दिया तो क्या पार्शलिटी करके दी, तब तो ये आज के गुरु तो होते हो गए स्कूल के मास्टर पार्शल, परंतु भगवान की वाणी तो सबके लिए तो वे तो पूर्ण वितराग थे, तो उनकी वाणी सुनकर तो किसी को समय ज्ञान समय दर्शन हो जाता है, कोई मुनिराज हो जाता है, किसी को तो केवल ज्ञान भी हो जाता है। वहाँ सुनने बैठे हैं और फिर वो सुनकर अपने में चले गए और वहीं पर वो मुनि अवस्था धारण करके केवल ज्ञानी भी हो। तो गुरु के कारण होता तो सबको समान होना चाहिए था। तो स्वतंत्रपने प्रत्येक जीव अपने ज्ञान पर्याय का करता है तब उसमें वो सब निमित्त उपादान सब लगेंगे, और बाह्य लौकिक में जब हम बात करते तो निमित्तों का वहाँ विनय किया जाएगा। परंतु विनय वही सच्चा, केवल हमने विनय किया इसलिए वो ज्ञान आया ऐसा नहीं होता है। अभी तो बाह्य उपचार ही रह गया, अंदर सब खाली रह गया। जिस शिष्य ने गुरु के द्वारा बताया हुआ तत्व ज्ञान आत्मसात किया, उस रूप परिणमित किया, वही वो गुरु का सच्चा गुण है। फिर वो बाह्य में जाके उनके धोएगा, उनके उपकार मानेगा, वो सब बातें होगी लौकिक में, पर मूल उसको हम उस शिष्य ने ग्रहण किया कहेंगे तब जाके उस गुरु को निमित्त कहेंगे। शिष्य ने वो समझा ही नहीं है तो हम उसको निमित्त भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब कार्य होगा तभी निमित्त होता है। यहाँ ज्ञान में समझने रूप पर्याय नहीं हुई तो समझना हुआ ही नहीं तो हम कैसे कहेंगे ये हमारे निमित्त। ख्याल में आती बात, कार्य हुआ तब हम निमित्तों पर आरोप करेंगे कि इनके कारण हमें ज्ञान। आगे पढ़ते देखो, कर्ता कारक की परिभाषा हमने क्या पढ़ी, जो स्वाधीन पने से स्वयं के परिणाम को करता है वह कर, उसको कर्ता कारक कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, वो ज्ञान की रचना में भी पर की अपेक्षा नहीं। कभी कितने बजे दिखाई देता है क्या, अरे तो घड़ी देखने से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, तो ज्ञान स्वाधीनता से अपने पर्याय में हुआ, द्रव्य उस रूप पर नहीं होता है, वो सामने फिर आपने निमित्त को निमित्त होता है, ख्याल में आती है बात,
निमित्त होता है
पर हमें निमित्त जोर कहाँ आता है अपना निमित्त पर, परंतु जोर यहाँ निजे उपादान शक्ति का है, तो यथा योग्य निमित्त होगा वहां, परंतु निमित्त होता है, जरूर होता है, परंतु निमित्त हर पर्याय में होता है, पर निमित्त तो होता ही है, ही का जोर कहाँ लग रहा है निमित्त पर, ख्याल में आती है, परंतु कार्य होता स्वाधीन रूप से कौन परिणमा, वो द्रव्य स्वयं, तो सच्चा कारण कौन है, वो द्रव्य स्वयं उसका। अभी कर्म कारक की बात देखें, कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त करता है, यानी द्रव्य जिस अवस्था को प्राप्त करता है, द्रव्य ने अवस्था को प्राप्त किया, यानी क्या, द्रव्य उस रूप परिणमा, तो द्रव्य ने किस अवस्था को प्राप्त किया, किस पर्याय को प्राप्त किया, वो पर्याय ही उस द्रव्य का कर्म है, कर्म है ने कार्य,
जैसे दूध में से दही बना,
हाँ, तो वो उसका कार्य हुआ, वो उसका कर्म हुआ। हम लौकिक में हम बाह्य अन्य अन्य द्रव्य को घटित करके पहले देखेंगे, तो हम कहेंगे कुमार ने घड़ा बनाया, ये तो लौकिक उदाहरण है, भिन्न भिन्न द्रव्यों में घटित कर रहे हैं, बाद में हम एक ही द्रव्य पर घटित करेंगे, ये तो समझने के लिए पहले निमित्तों के द्वारा समझाएंगे या स्थूल उदाहरण देके समझाएंगे। तो कुम्हार हुआ कर्ता, उसने क्या बनाया, तो घड़ा बनाया, तो घड़ा क्या कहेंगे, कर्म, षटकारक में उसको नहीं लेना है, वो एक ही द्रव्य पर घटित करना है, फिर भी समझाने के लिए फिर हम बाह्य चीजों की वो व्यवहार के कथन लेकर उसको समझाएंगे। हाँ, माटी स्वयं परिणमित हुई है,
तो माटी कर्म न
होता है, हाँ माटी को वो घड़ा ही उसका कर्म है, या माटी को भी उसका अपना वो स्वयं करता है, वो स्वयं कर्म है, ऐसा कहेंगे, माटी का परिणाम उसका कर्म है, माटी किस रूप परिणमित हुई, घड़े रूप, तो वो उसका वो माटी का कर्म है। हाँ, ये आगे बढ़ेंगे, एक एक डेफिनेशन के ये सभी इसी में पुस्तक में लिख कर समझाए, वहीं पढ़ेंगे। तो कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त करता है, वह परिणाम उसका कर्म अर्थात कार्य, परिणाम कहो वह पर्याय कहो, यही उसका कर्म है, यही उसका कार्य। उसको ऐसा भी कहते हैं, कर्ता का इष्ट वह उसका कर्म, कर्ता क्या कर रहा है, वो उसका इष्ट क्या है, वही उसका कर्म, यानी उस जैसा हम कहते ना, धर्मी जो ज्ञानी है, तो उसका इष्ट उसका कार्य क्या है, उसकी ज्ञान की समय दर्शन ज्ञान की पर्याय वही उसका इष्ट है, वही उसका कार्य। और ये जो व्यवहार रत्नत रहे ना, कौन से देव गुरु शास्त्र की भक्ति है, उसकी चर्चा है, ये बाह्य स्वाध्याय है या कौन भी मुनिव्रत वगैरह है, वो क्या है, जिसको हम व्यवहार से रत्नत्रय कहते हैं, वो उसका इष्ट नहीं है, वो उसका प्रिय नहीं है, वो तो बाह्य चीजें, हाँ, जिसको व्यवहार से उपचार से कह देते हैं, परंतु सच्चा रत्नत्रय कहाँ है, समय दर्शन ज्ञान अपने, यानी जो निर्मल पर्याय है वही उसका कार्य, धर्मी यानी ज्ञानी का कार्य उसकी पर्याय क्या है, उसकी शुद्ध परिणति उसका कार्य, उसके राग भाव यानी उसके शुभ भाव है, उसको उपचार से हम उसका कार्य कहेंगे, परंतु वो उपचार है, क्योंकि शुभ भाव क्या है, बंध का कारण है, ज्ञानी को क्या प्रिय है, अपने में स्थिर होना ही उसको प्रिय है, हाँ वो अपने में स्थिर नहीं होता तो बाह्य में उसके व्रत उपवास आदि के सभी परिणाम होंगे, परंतु उसमें सच में क्या है कि इससे भी हटकर मैं अपने में स्थिर कैसे रह जाऊं, यही उसका इष्ट। आगे बढ़ेंगे, दो कौन से हुए, हाँ बहुत अच्छा, अभी तीसरा है करण कारक, उस परिणाम के उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं, जिस साधन से वो कर्म यानी पर्याय प्राप्त हुए, उस साधन को यहाँ पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, हर एक के उदाहरण फिर बाह्य में लौकिक में घटित करेंगे और फिर अध्यात्म में भी इसको। चौथा है संप्रदान कारक, कार्य जिसे देने में आता है अर्थात जिसके लिए वह कार्य किया गया हो उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे कुमार पर हम घटित करेंगे, कुमार ने घड़ा बनाया, किसके लिए बनाया? तो ग्राहक के लिए, पानी भरने के लिए बनाया, तो उसको उसके लिए, ये तो लौकिक उदाहरण है, उसको कहेंगे संप्रदान। अपादान कारक किसको कहेंगे? जिसमें से कार्य करने में आता है उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। पहले एक एक डेफिनेशन देखेंगे, अभी कौन सी रहेगी? अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होता है आधार, कि जिसमें या जिसके आधार से कार्य करने में आता है उसे अधिकरण कहते हैं। अब ये क्या हुए? षट कारक हुए। पर्याय कितने समय तक टिकती है? एक समय, यानी कार्य एक समय है, तो एक ही समय में ये षट कारक लगते हैं। एट ए टाइम हमने देखा था, हमने तो केवल निमित्त उपादान दो ही कारणों की चर्चा की, यहाँ तो ये सभी उसके साधन भी उसी समय उपलब्ध है, उसका जो संप्रदान भी, अपादान भी, अधिकरण भी, सब उसी समय में है। ये कार्य के प्रति प्रयोजक रूप ये जो छह बातें हैं, तो जिस समय में वो पर्याय एक समय के लिए है उसी समय उस पर्याय के छह कारक वहां उपलब्ध है और वो द्रव्य में ही है। ये तो हम समझाने के लिए बाह्य चीजों पर समझा रहे, कुमार पर और घड़े पर। देखो यहाँ आगे पढ़ेंगे हम, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में छह कारक एक साथ रहते हैं। क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में क्यों रहते? क्योंकि प्रत्येक पर्याय उसका कार्य है, और पर्याय जहां जहां कार्य हो रहा है तो वहां ये षट कारक है ही है, यानी वो षट कारक में से ही एक कार्य होता है। यानी द्रव्य इतना सेल्फ सफिशियंट है कि उसमें ये छह कारक है विद्यमान, और वो प्रत्येक पर्याय के अपने अपने छह कारक। नहीं तो किसी समय कोई पर्याय होती है और किसी समय कोई पर्याय होती है, तो एक समान पर्याय आदि अनंत होनी चाहिए थी, कारक है ना द्रव्य में। हाँ, परंतु वो पर्याय के अपने अपने षट कारक थे, कि कोई पर्टिकुलर द्रव्य विशिष्ट यानी पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर पर्याय रूप ही क्यों परिणमित होता है? तो कहते द्रव्य तो स्वतंत्र है ही, उसकी प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, अपने समय पर अपने षट कारकों से उत्पन्न। कितनी स्वतंत्रता हो गई हमें, तो अपने को और ये सभी पर्यायों को पराधीन कोई आएगा और हमारी पर्याय करके देगा, या हम किसी अन्य चीज की इसको यहां से उठाकर यहां रखा, मैंने इसका कार्य किया। तो कहते प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने षट कारक से स्वयं उत्पन्न होती, वहां तो स्वतंत्रता बताने के कहेंगे उसको तो द्रव्य की भी अपेक्षा क्यों नहीं, वो तो द्रव्य तो त्रिकाल पड़ा है और पर्याय उसी पर्टिकुलर समय में क्यों होती है? तो उस पर्याय के षटकारक उस समय में वहां पर हाजिर। और भी इसकी क्लैरिटी होगी हम आगे पढ़ेंगे। जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध पर्याय रूप से या अशुद्ध यानी विभाव पर्याय रूप से परिणमित होते हैं, तब ये दो ही द्रव्य क्यों लिए मुकुंद भाई? क्या कहा यहाँ? जीव या पुद्गल द्रव्य शुद्ध पर्याय या अशुद्ध पर्याय रूप से परिणमित होते हैं, तब हमने अभी सेंटेंस पूरा नहीं किया, किंतु यहाँ दो ही द्रव्यों को लिखा। क्यों? हाँ, कर्म की कहाँ बात है, पुद्गल द्रव्य की। हाँ, दो ही द्रव्यों को क्यों लिया? जो वाक्य हमने पढ़ा क्या लिखा? जीव और पुद्गल
दोनों ही परिणमता है,
छह द्रव्य परिणमते हैं।
बात सही है, धर्म अधर्म आकाश
सार सभी द्रव्य परिणमते हैं। यहाँ दो ही, हाँ क्या लिखा है?
दो ही द्रव्य अपने संबंधित है,
नहीं नहीं क्या लिखा है, कैसे परिणमित हो रहे हैं? दिखा लिखा है शुद्ध और अशुद्ध, बाकी द्रव्य कैसे परिणमित होते हैं? शुद्ध ही होते, यही तो मैं पूछना चाहती, यही मैं पूछना चाहती, बाकी जो द्रव्य है उनका परिणमन शुद्ध ही अनादि अनंत। ये विभाव रूप परिणमने की योग्यता जीव और पुद्गल में ही है, तो वो विभाव रूप परिणमेंगे या स्वभाव रूप परिणमेंगे? शुद्ध पर्याय रूप से परिणमेंगे या अशुद्ध पर्याय रूप से परिणमेंगे, ये दो द्रव्य। तो ये कौन निश्चित करता है कि शुद्ध पर्याय रूप परिणमेंगे कि अशुद्ध पर्याय परिणमेंगे? हम अगले वाक्य पूरा पढ़ेंगे। तो जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध पर्याय रूप से या अशुद्ध यानी विभाव पर्याय रूप से परिणमित होते हैं, तब स्वयं ही षटकारक रूप होकर परिणमन करते हैं। बात अच्छी है आपका प्रश्न कि पुद्गल में क्या अशुद्धता है। जीव में तो अशुद्धता समझ में आती है, पुद्गल में अशुद्धता कैसी? तो पुद्गल की शुद्धता यानी स्वयं परमाणु रूप से रहना ही उसकी शुद्धता है, और परमाणु भी परिणमित होते हैं, और वे ही परमाणु जब स्कंद रूप से इकट्ठे हुए यहाँ उनकी जो जुड़ जाते एक दूसरे के, वहां भी उसका स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन चलता है। जब स्कंद अवस्था में उनका परिणमन होता है तो उसको हम अशुद्ध कहेंगे। स्कंद रूप होना ही उनका विभाव है, और स्कंद के जो स्पर्श गुण रस गुण वगैरह गुणों की पर्याय है उसको हम विभाव पर्याय कहेंगे। और जब वो अकेला सिंगल अवस्था में है परमाणु, तब जो उसका परिणमन होता है उसको हम स्वभाव पर्याय कहेंगे, वो उसकी शुद्ध पर्याय कहलेगी। और पुद्गलों में ऐसा है कि कभी स्वभाव रूप है, विभाव रूप हो जाता है, फिर दोबारा स्वभाव रूप होता है, परिविभाव रूप होता है, वो तो चलता रहता है। और जीव में क्या विशेषता है? एक बार स्वभाव रूप हो गया, मोक्ष अवस्था प्रकट हुई, तो फिर वो विभाव रूप कभी नहीं होगा तीन काल में। पुद्गल तो होता रहता है, कभी स्वभाव रूप कभी विभाव रूप, हाँ सिंगल हो जाएगा, और कभी वो सब पुद्गल के स्कंद हो जाएंगे है? तो वहां तो स्वभाव विभाव चलता रहता है उसका अनादि अनंत, परंतु ये कोई आएगा अन्य तो ही होगा ना उसका। जीव को शुद्ध परिणमन करने के लिए देव गुरु शास्त्र की आवश्यकता है कि नहीं है? स्वयं कर्ता रूप होकर परिणमे, ये षट का वो तो निमित्त रूप से है वहां पर,
कार्य में कुछ नहीं करता। ये बात ध्यान,
हमने कर्ता कारक में भी चार देखे ना, तीन तो उपादान त्रिकाली क्षणवर्ती वगैरह देखे, और एक तो निमित्त है, और वो भी उपचार कारण है। वो है भले, उसके ना नहीं है, परंतु ये स्वयं वह द्रव्य अपने षटकारक रूप से होकर परिणमित होता है, ये तो पता ही नहीं था ना आज तक। हमने बाह्य साधन से ही कुछ होता ऐसा माना था, ये करण साधन करण कारक वाली बात ही पता नहीं थी हमें। अभी तो हम पढ़ेंगे आगे, देखो क्या कहते हैं। जीव और पुद्गल द्रव्य शुद्ध पर्याय रूप से या अशुद्ध यानी विभाव पर्याय रूप से परिणमित होते हैं, तब स्वयं ही छह कारक रूप होकर परिणमन करते हैं। उन्हें अन्य कारणों की अर्थात निमित्त कारणों की अपेक्षा नहीं होती। निमित्त वहां भले हाजिर हो, वो कार्य में तो कोई उसका योगदान नहीं, बस उसकी उपस्थिति है, वो तो अपने में परिणमित हो रहा है, वहां वो उपस्थित है इतना मात्र है। तो ये सारा कार्य कहाँ हो रहा है? उस अपने द्रव्य में हो रहा है। तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही षटकारक रूप से होकर उस पर्याय रूप से परिणमित होता है, उन्हें परद्रव्य के अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। 85 का गाथा 62 की टीका में यह कथन है, और यह कथन बहुत बार गुरुदेव ने भी कोट किया है इसको, कि उसको अन्य का विभाव पर्याय भी राग द्वेष की पर्याय हो तो भी वह जीव स्वयं अपने उस अशुद्ध उपादान रूप से परिणमित होकर, अपने षटकारक रूप से परिणमित होकर उस विभाव रूप से पर्याय रूप से परिणमित हुआ है। हम क्या मानते हैं? अरे नहीं, उसने हमें तकलीफ दी इसलिए हमको कषाय हो गए, वहां भी लगा नहीं ये षटकारक। जब निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए, ये निमित्तों का कथन तो आता है ना शास्त्र में, बहुत विस्तार से आता है सारा कर्णानियोग कर्मों की थियरी, तो निमित्तों की अपेक्षा बताई है। जब हम समय दर्शन की या जो ज्ञान की बात करते हैं, तो पहले सदगुरु को भगवान सर्वज्ञ की द्वारा चली आई बात उसको हम निमित्त रूप से पहले में पहले रखते हैं। तो कहते जब निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए, निमित्त होता है तो उसका ज्ञान किया जाता है, पर निमित्तों से कार्य होता ऐसा मानेंगे तो वो श्रद्धा झूठी हो गई, अभिप्राय झूठा होगा। निमित्तों को मानेंगे ही नहीं तो ज्ञान खोटा हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो सबको जैसा है वैसा जानता है, जानना ये ज्ञान का कार्य है, तो सही जानना। निमित्त होता है तो उसको जानेंगे, परंतु निमित्त है इसलिए निमित्त ने कार्य किया ऐसा नहीं है, इसका बैलेंस नहीं खोना। जब निमित्तों का कार्य होने का निषेध करते तो हम निमित्तों का निषेध नहीं कर रहे हैं, उससे कार्य होने की मान्यता का निषेध कर रहे हैं। ख्याल में आई ना दोनों में डिफरेंस? हाँ देखो, निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए भिन्न द्रव्यों को अर्थात निमित्तों को कारक कहा जाता है, जो हमने पहले देखा था उपादान और निमित्त, चार उपादान के तीन भेद और एक निमित्त, चारों को कर्ता कारक में लिया था। जब निमित्तों को कारक कहा तब निश्चित रूप से समझना वे व्यवहार कारक है। उसको कैसे कारक कहा? उपचार से व्यवहार कारक कहा,
इसलिए किया।
हाँ, उदाहरण के लिए देखते हैं, कुम्हार कर्ता, ये भिन्न भिन्न षटकारक कहेंगे, अलग अलग में एक कारक है, कर्ता है, कोई कर्म है, कोई उसका साधन है, कोई संप्रदान है, जो लौकिक उदाहरण लेके यहाँ समझाया है। तो कुम्हार कर्ता है, तो किसने बनाया ये घड़े की बात है, तो कुम्हार ने बनाया तो हम कहेंगे कुम्हार को कर्ता का। घड़ा कर्म है, कुम्हार ने क्या बनाया तो घड़ा बनाया, तो उसके साधन क्या थे, तो चक्र, दंड, दंडे ने उसकी वो लकड़ी दोरी उसके वो खींचता है उसके नीचे डाल दे, ये करण है उसके अलग अलग। अब संप्रदान क्या है, पानी भरने वाले के लिए घड़ा बनाया, इसलिए पानी भरने वाला संप्रदान है। किसके लिए बनाया, तो पानी भरने वाले के लिए बनाया। अब अपादान क्या है, तो टोकरी में से मिट्टी निकाल कर घड़ा बनाया, इसलिए टोकरी अपादान है, जिसमें से वो टोकरी को ले लिया। जमीन के आधार से घड़ा बनाया, इसलिए जमीन अधिकरण है। ये भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ये भिन्न भिन्न कारक हमने घटित करके लौकिक उदाहरण देख लिया है। और दूसरा उदाहरण देखो कि मैं बूंदी के लड्डू बना रही थी तो मैं करता। रोहित ने पूछा नानी जी क्या बना रही हो, तो लड्डू, तो कर्म क्या हुआ, लड्डू कर्म हुआ। अगला प्रश्न, किससे बना रही हो, यानी साधन क्या है, तो झारे से, तो झारा क्या हुआ, करण। नानी जी किसके लिए बना रही हो, तो तेरे लिए, रिया के लिए, रोहन के लिए, सोहम के लिए, ये क्या सभी नाती क्या हुए, संप्रदान। ये बच्चों के लिए बनाया वो हुए संप्रदान। किसमें से बना रही हो, तो डब्बे में से बेसन निकाल कर बना रही हूँ, तो डब्बा क्या हुआ, अपादान।
लोट अपादान
नहीं, वो तो उसमें वो तो स्वयं परिणमित हुआ है ना, उसको बाद में घटित करेंगे हम। ये तो हम लौकिक स्थूल रूप से, बहुत हमेशा क्या होता है, कोई भी हमें सिद्धांत सीखना है तो अत्यंत स्थूल उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसमें से फिर हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे। सच में देखा तो ये लोट में ही सब घटित होगा, ख्याल में आई बात। परंतु ये जो हम लौकिक में जो जो क्या किसने बनाया, किसमें से बनाया, इसमें क्या क्या साधन इकट्ठा करना है, ये उदाहरण के तौर पर पहले में पहले घटित करें, फिर और उसमें से सूक्ष्म बातों की ओर हम जाएंगे। इसको सब भिन्न कारक कहेंगे, व्यवहार कारक कहेंगे, ये सच्चे कारक नहीं है,
मोटा मोटा उदाहरण।
हाँ, और सब भिन्न भिन्न वस्तु है ना, इसके लिए एक बनाया और इसमें से वो साधन भिन्न हो गए, वो लड्डू भिन्न हुआ, जिसमें से वो निकाल के हुआ वो भिन्न हुए, ये सभी अलग अलग चीजों को छह अलग अलग चीजों पर घटित किया है, जो स्थूल लौकिक हम उदाहरण देख रहे हैं। तो ये डब्बा हो गया अपादान। किसमें बना रही हो, तो थाली में बना रही हूँ, ये किसके आधार से है ना, तो थाली में वो लेके बना रहे हैं, तो थाली हुई अधिकरण। अब देखो यहाँ प्रत्येक कारक भिन्न भिन्न है, कोई करता है, कोई अन्य उसका कर्म है, कोई अन्य उसका साधन है, तो ये क्या हुए, भिन्न, इसलिए इन्हें भिन्न कारक भी कहते हैं। अन्य कर्ता, अन्य कर्म, अन्य करण, अन्य संप्रदान, अन्य अपादान और अन्य अधिकरण होने से ये व्यवहार कारक है, ये उपचार कारक है, ये सच्चे कारक नहीं है, ये नक्की हुआ ना। लौकिक में हम ऐसी किसने बनाया क्या किया ऐसी चर्चा करते हैं तो कहते हैं ये तो व्यवहार से है, ये तो सच्चे है नहीं। हमें तो इन रियलिटी उसका सच्चा कारण क्या है ये तो हमारे ज्ञान में निश्चित करना है। ये लौकिक बोली भाषा बदलती नहीं है। जब हम पूछेंगे ये लड्डू कैसे बनाए, किसमें से बनाए, तो बोला आटा स्वयं परिमित हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया, वो ऐसा नहीं कहेंगे। भाषा नहीं चेंज होगी अपनी, उसके पीछे का ज्ञान और श्रद्धा सही हो जाएगा। ये पहले हमने 85 का गाथा बासर देखी थी, अब प्रवचन सार गाथा 16 के भावार्थ में का, ये दोनों ही जो रेफरेंसेस है बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुंकुंदाचार्य ने, दोनों ही कुंकुंदाचार्य के ग्रंथ है। तो प्रवचन सार गाथा 16 के भावार्थ में कहा है कि वस्तु स्थिति देखने पर, यानी इन रियलिटी, यानी परमार्थ दृष्टि से, यानी निश्चय से देखा जाए तो
सूक्ष्म बता रही है।
हाँ, अभी सूक्ष्म, पहले भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ये 6 कारक बताए हैं। अब कहते हैं कि परमार्थ दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता हो ही नहीं सकता। दूसरे द्रव्य का अर्थ उसके किसी पर्याय का, नहीं तो ऐसा नहीं समझना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के पर्याय का कर्ता, ऐसा उसमें से कुतर्क नहीं लड़ाना। ख्याल में है ना, मैंने ऐसा कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो कहते द्रव्य तो कोई बना नहीं सकता, परंतु दूसरे द्रव्य की पर्याय का तो हम करता है कि नहीं, कहते तो कहते नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, पर की पर्याय का कोई भी द्रव्य हो ही नहीं सकता तीन काल में। ये बिल्कुल, इसको इतना ठोस अंदर निर्णय हो जाए तभी हम आगे अपना कार्य बढ़ा सकते हैं। तो कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता हो ही नहीं सकता, इसलिए ये व्यवहार 6 कारक असत्य है। लौकिक में जो हम कहेंगे कथन भले हो रहा है, परंतु वो सच्चे कारक है नहीं है, उन्हें कारक कहना औपचारिक कथन है। कहते हैं परंतु जहां जहां ऐसा कथन आता है वहां क्या समझना, ये औपचारिक कथन है। जब हम कहेंगे कि मुनिराज ध्यान में लीन हो गए और उन्होंने 4 घाती कर्म का अक्षय करके वो अरिहंत हो गए, तो मुनिराज ने यानी जीव द्रव्य ने कर्मों का अक्षय किया, ये कैसा कथन है? व्यवहार कथन है। वो उस कार्य के कर्ता नहीं है, क्योंकि 2 भिन्न द्रव्यों में इसने उसका कार्य किया। कथन भले हो, क्योंकि कथन व्यवहार से होते हैं, कथन का निषेध नहीं है, परंतु उसमें सही अर्थ समझना हमारी जिम्मेदारी है।
वो अपने में स्थिर हुए, वो तो अपना अपना कार्य,
कर्म अपने अपने में, वो उसका जो कुछ जीव के प्रदेशों से छूट जाकर जो कुछ अवस्था होनी उसमें होती है, परंतु कर्णानियोग के कथन ऐसे ही होते हैं। क्या कि जीव ने कर्म को उपशमाया है, फिर उसकी इतनी असंख्यात गुना निर्जरा हो गई है, कि जीव ने किया ऐसा कहेंगे, उसने जीव ने अपकर्षण किया, उसकी निर्जरा की, उसने ऐसा किया वैसे किया, ये जीव ने किया कहना कैसा कथन है? औपचारिक कथन है, व्यवहार कथन है। उसके पीछे का सही अर्थ क्या है? जीव अपने में अपनी अवस्था कर रहा है, कर्म अपने में उसकी अवस्था रूप परिणित हो रहा है, ये सही जानकारी है उसमें। क्योंकि हर बार ऐसा कथन करने में हर बार वो निश्चय नहीं लगाएंगे, व्यवहार से भले कथन हो परंतु सही अर्थ जानना हमारी अपनी जिम्मेदारी। जहां जहां 2 द्रव्यों का मिलकर कथन है वहां ऐसा ही समझना। तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि व्यवहार कारक असत्य है तो फिर सत्य कारक यानी निश्चय कारक कौन से है? उदाहरण के लिए तो पहले हमने व्यवहार यानी भिन्न कारकों की चर्चा की, अब जाके कहते कि ये सारे असत्य है, तो सही कारक कौन से है? हम अपने घड़े के प्रसिद्ध उदाहरण पर घटाएंगे। आपने पूछा था ना वो आटे में से लड्डू बने कि क्या, तो ये अभी घड़ा जो बना है उसका प्रसिद्ध जो उदाहरण है उस पर ये घटित करके देखेंगे। मिट्टी स्वतंत्र पने से घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है। क्या कहा? जो घड़ा रूप जो कार्य बना तो कौन परिणमित हुआ? तो मिट्टी स्वयं। तो मिट्टी स्वतंत्र पने से अपने घड़ा रूप कार्य को प्राप्त हुई है, इसलिए मिट्टी करता है और घड़ा कर्म है। अथवा घड़ा और मिट्टी अभिन्न होने से मिट्टी स्वयं ही कर्म है। आपने पूछा था ना उसके बाद, दोनों पर्याय और द्रव्य को अभेद करके बताएंगे हम, तो मिट्टी अपना कर्म, क्योंकि एक ही द्रव्य पर उसके छह कारक घटित करेंगे। मिट्टी ही स्वतंत्र पने से घड़ा रूप परिणमित होती है, तो वो उसका कर्ता हुई, और घड़ा मिट्टी स्वयं कर्ता। देखो, मिट्टी स्वतंत्र रूप से घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है। हमारी दृष्टि बाहर जाती है, अरे कुमार ने नहीं परिणमा तब तक क्यों नहीं प्राप्त हुई। माटी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई, वो स्वयं कर्ता। हमने देखा ना, रोटी रूप कौन परिणमित हुआ? आटा। तो रोटी का कर्ता कौन है? तो आटा। इतनी बात समझ में? तो उसका कर्ता कौन ठहरा? आटा। यहाँ हम घड़े पर घटित करें, तो घड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी। तो मिट्टी कर्ता और घड़ा कर्म है। क्या बना है मिट्टी में से, क्या बना, उसकी पर्याय कौन सी? तो घड़ा। तो घड़ा उसका कर्म है। और कहीं कहीं ऐसा भी कहेंगे मिट्टी स्वयं अपना कर्म है, क्योंकि वो अवस्था और द्रव्य एक अभिन्न है, इसलिए उसको एक गिनकर मिट्टी ही अपना कर्म है, ऐसा भी कहेंगे, ऐसा भी कथन आता है शास्त्र। स्वयं के परिणमन स्वभाव द्वारा मिट्टी ने घड़ा बनाया। प्रत्येक द्रव्य में परिणमन स्वभाव पड़ा है। अपनी पर्याय रूप परिणमित होने का कार्य प्रत्येक द्रव्य में होता है। आपको कोई ऐसा गुण पता है कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करता है? हाँ, कौन सा है? नहीं, उस गुण का नाम क्या है? प्रत्येक द्रव्य, हाँ, वस्तुत्व गुण। हमने पढ़ा था ना सिद्धांत प्रवेशिका में कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने पर्याय का करता है, नहीं वो अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है, ऐसी शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है। तो ये उसका परिणमन स्वभाव है। तो मिट्टी अपने परिणमन स्वभाव से घड़े रूप परिणमित हुई है, तो ये मिट्टी स्वयं ही उसका कारण है। क्या में? तो हमने तीन देखे, कौन कौन से? मिट्टी स्वयं ही करता है, मिट्टी स्वयं ही कर्म है, या घड़ा उसका कर्म है कहीं ना भी, क्योंकि उसको अभेद करके हमने बताया है। और तीसरा, उसका जो परिणमन स्वभाव है, अपने परिणमन स्वभाव से वो स्वयं ही अपने पर्याय रूप से परिणमित हुई है, इसलिए मिट्टी ही अपना करण है। ऐसे हमने तीन बातें देखे, बाकी तीन की हम कल चर्चा, दोपहर में चर्चा करेंगे।